समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
विभिन्न रंगों से सजी ये दुनिया और इन रंगों की रंगीनियों से जीने की उमंग देती जिंदगी, बस इतनी ही सी तो बात है। चाहे तो इन सतरंगी रंगों की खूबसूरती जीवन में भरकर इसे हसीन बना लिया जाए, या इन इंद्रधनुषी रंगों को नजरअंदाज करके जीवन नीरस बना लिया जाए, चुनाव हमारा अपना है, क्योंकि जिंदगी हमारी अपनी है। मगर इस पर भी कुदरत के दिए ये खूबसूरत रंग हम सबके हैं। देखिए ना, सुबह का आगाज ही जिस रंग से होता है वो है सूरज की सुनहरी किरणें, जो पैगाम देती हैं कि ये खूबसूरती न सिर्फ आंखों में बल्कि जिंदगी में भी भर लेना ही अकलमंदी है। समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे में सभी श्रोताओं को इस संदेश के साथ स्वागत करते हैं। आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर आपके साथ आज सवेरे में मैं हूं नईम अख्तर, और साथ है मेरे नीना अर्कल मैथ्यू। कैसी है नीना आप?
बिल्कुल ठीक। Hello Naeem, and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 18th of October. So let us begin with the headlines first.
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल चंडीगढ़ में NDA के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में सुशासन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। बैठक में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में NDA के 17 मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये किसी गैर कांग्रेसी सरकार की पहली बैठक थी और इसमें सभी दलों ने भागीदारी की। उन्होंने कहा कि बैठक में 6 संकल्प पारित किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
द नोटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस विल बी इश्यूड टुडे इन झारखंड। 43 कंस्टिट्यूएंसीज विल गो टू पोल्स इन दिस फेज ऑन 13th ऑफ नवंबर। 25th अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। कैंडिडेट्स कैन फाइल द नॉमिनेशंस फ्रॉम 11 AM टू 3 PM। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस विल बी डन ऑन 28th अक्टूबर। लास्ट डे फॉर विद्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर इज 30th ऑफ दिस मंथ। असेंबली इलेक्शंस इन झारखंड आर बीइंग हेल्ड इन टू फेजेस। द सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग will take place on 20th November. Counting of votes will be taken up on 23rd November. Our correspondent reports that both NDA and India Alliance are engaged in hectic parleys with their allies to decide seat sharing formula.
अब अग्रिम रेल टिकट 120 के बजाय 60 दिन पहले ही ली जा सकेगी। ये बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक 4 महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 365 दिन बनी रहेगी।
President Draupadi Murmu, on the second day of her visit to Malawi as part of her three African nations, is scheduled to hold bilateral meetings and delegation level talks with leadership of Malawi today. President Draupadi Murmu will be holding bilateral meetings with the President of the Republic of Malawi, Lazarus Chakwera, today. Delegation level meetings will also be held today on various issues. The President will also visit the National War Memorial and Mausoleum. Meanwhile, the President had interacted with Indian diaspora in community event last evening. President urged the Indian community to continue to do good work and to be active partners in the vision of Viksit Bharat.
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास प्रमुख यहया सिनवार मारा गया है, लेकिन गजा में इसराइल से युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। यहया को पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले का सरगना समझा जाता है। हमास ने अभी तक उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। श्री नेतन्याहू ने शनिवार की मौत की सूचना इसराइली बंधकों के परिवारों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। कल इसराइल की सेना ने शनिवार सहित गजा में 3 आतंकवादियों को मार गिराने की पुष्टि की थी। शनिवार हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख था। वो इस्माइल हानिया का उत्तराधिकारी भी था। हानिया को इस वर्ष जुलाई में तेहरान में मार गिराया गया था। कुछ सप्ताह पहले इसराइल ने लेबनान में हवाई हमले कर हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला को भी मार गिराया था। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 134 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने यह लक्ष्य 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए नाबाद 74 रन बनाने वाले एनिक बॉश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच के विजेता का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा।
In the SAFF Women's Football Championship, India outclassed Pakistan 5-2 in the Group A match at Dasharath Stadium in Kathmandu, Nepal yesterday. In a one-sided encounter, the five-time champions India were leading 4-1 at half-time. The match featured Indian skipper Luitong Bam Ashalata Devi's 100th appearance for the team and the 50th international goal of prolific striker Gangom Baladevi, who became the first Indian woman footballer to do so. India will now face Bangladesh in its second Group A fixture on 23rd of October. The final will be played on 30th of this month. The India and Pakistan are drawn in Group A along with Bangladesh, while Group B includes hosts Nepal, Bhutan, Maldives and Sri Lanka.
14 वर्ष से कम उम्र की 68वीं राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए असम के तामुलपुर के खेलो इंडिया तलवारबाजी केंद्र के 6 खिलाड़ियों को चुना गया है। इनमें स्वरांगमा बोरो, माधुरी दास, अखिल बोरो, ध्रुवजीत बोरो, गौरव महंता और रंजीत बोरो शामिल हैं। प्रतियोगिता 12 से 16 नवंबर तक जम्मू में होगी। और अब वक्त है कि अपने श्रोताओं को प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें बता दें नीना।
यस नीम, लेट्स फाइंड आउट अबाउट चेन्नई फर्स्ट।
जी,
तमिलनाडु एनिमल वेलफेयर बोर्ड हैज अर्ज द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन टू इश्यू पेट लाइसेंसेस विद माइक्रोचिप्स टू ट्रैक ओनर्स इफ पेट्स आर लॉस्ट और अबैंडन्ड। द डिवाइसेस कैन बी इम्प्लांटेड अंडर अ पेट स्किन विद अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। They provide a tamper-proof way to identify pets, including their vaccination and neutering status. Once they are lost or abandoned, a vet or shelter can scan the chip to contact the owner. The board received emails about 18 abandoned pet dogs in Chennai from May to September. The government banned 11 cold climate dog breeds, including pugs and Siberian huskies. They are not suited for the hot climate. 6 Labradors, 4 Huskies and 3 Dobermans and a Rottweiler were found abandoned last week. The Madras High Court has ordered action against a temple trustee and 3 women employees for posting a reel with comic videos in Instagram. Justice M. Dhandapani directed the state government to take appropriate action against her and 3 others. The case has been adjourned for hearing on 29th of this month for the department to file an action taken report. A group of 12 women had performed a dance inside the temple on April 24 and had posted on social media. Now over to you, Naeem.
जी, मेरे पास दिल्ली से जो खबरें हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर राजधानी के निजामुद्दीन क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से उच्च गुणवत्ता की 650 ग्राम से अधिक हेरोइन और 5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पकड़े गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। और एक और खबर है दिल्ली से। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राजधानी के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में काला हीरा गहराइयों का अनावरण प्रदर्शनी का अनावरण किया। विज्ञान केंद्र में स्थायी तौर पर शुरू की गई ये प्रदर्शनी कोयले के जीवनकाल पर आधारित है। इसका उद्देश्य कोयले की खोज, निष्कर्षण की प्रक्रिया, कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक और खनिजों के खनन के बारे में जानकारी देनी है।
Moving on to Bengaluru, Union Minister for Heavy Industry and Steel H.D. Kumaraswamy will inaugurate a mega job fair in Mandya tomorrow. The 2 days job fair at Sir M. Vishveshwaraya Stadium in Mandya will have 150 employers considering the walk-in candidates for various jobs. Among those employers participating in the job fair are Steel Authority of India, National Mineral Development Corporation, Bharat Heavy Electricals Limited, Mekon, Jindal Steel, among others. The job fair with the title Mandya to India has a target to provide employment to over 3,000 youth in the Mandya region.
अब मेरे पास मुंबई से दो खबरें हैं नीना। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद पिछले दो दिन में उसने 7389 पोस्टर, बोर्ड, बैनर, झंडे और अन्य अनाधिकृत सामग्री हटाई है। महानगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिला चुनाव अधिकारी और महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगनानी ने अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड, बैनर, पोस्टर पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में विधानसभा चुनाव पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है। श्री गगरानी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव में मुंबई उपनगरीय जिला और मुंबई शहर जिला के प्रत्येक मतदान केंद्र पर न्यूनतम सुविधाएं उचित रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और एक और खबर जो मुंबई से है मेरे पास, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटेके के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ये मामला कथित 1200 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में जालसाजी और त्रुटिपूर्ण दस्तावेजीकरण के मामले से जुड़ा है। आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नवटेके पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 466, 474 और 201 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
नईम, हियर्स न्यूज फ्रॉम हैदराबाद नाउ।
जी,
तेलंगाना स्टेट चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी हैज सेड ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द ग्रुप वन मेंस एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड फ्रॉम 21st टू 27th ऑफ दिस मंथ। The Group 1 mains examinations are being held in Telangana for the first time after the state formation and the last time the mains exams were held in 2011. She reviewed arrangements in Hyderabad yesterday with district collectors, police commissioners and officials concerned on the conduct of the examination. She informed that security has been provided to prevent any kind of untoward incidents at all the centres. District collectors will directly supervise the conduct of these examinations and the police commissioners concerned will also make appropriate arrangements. Telangana Public Service Commission Chairman Dr. Mahendra Reddy said Group 1 mains examinations are being conducted after a gap of 13 years.
Aur mahanagaron se judi khabron mein aakhri khabar le rahe hain Kolkata se. दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े रहे दिग्गज अभिनेता देवराज रॉय का गुरुवार को कोलकाता में निधन हो गया। देवराज रॉय ने 1970 में सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंद्वी से अपने सिनेमाई करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने दिग्गज निर्देशक तपन सिन्हा, तरुण मजूमदार और विभूति लाहा के साथ काम किया। उन्होंने दूरदर्शन कोलकाता के साथ लंबे समय तक समाचार वाचक के रूप में काम किया। उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता में रेडियो नाटक में अपनी आवाज भी दी। देवराज रॉय किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। और प्रमुख महानगरों की खबरों के बाद इन्हीं महानगरों के मौसम के बारे में भी बात कर लेते हैं।
श्योर नहीं
जी, पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आम तौर पर आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 27 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और आज के आज सवेरे कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपने कहा था कि आज 18 अक्टूबर है। जी, सब जानते हैं 18 अक्टूबर है, लेकिन सब ये नहीं जानते होंगे कि 18 अक्टूबर को इतिहास में कौन कौन से साल में कौन कौन सी ऐसी खास घटनाएं घटी हैं जो अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं हमारी इस दुनिया के लिए। तो क्यों ना अब उन घटनाओं को कुछ याद कर लिया जाए, कुछ चुनिंदा घटनाओं को जो 18 अक्टूबर में इतिहास में घटी हैं इस पूरी दुनिया में।
In 1867, the U.S. flag was raised over Sitka, Alaska, after the U.S. purchased the Russian colony from Secretary of State William Seward. Alaska Day is celebrated annually in Alaska on October 18. The acclaimed musical film West Side Story, an adaptation of Broadway play, was released in American theaters. It won 10 Academy Awards, including that for the Best Picture. In 1906, Depressed Classes Mission Society was established by Vittal Ramji Shinde. Vittal Ramji Shinde was revered social reformer, researcher, writer, and proponent of anti-untouchability activism and religious unity in Maharashtra, India. He played a prominent role among liberal thinkers and reformers before India gained independence. Shinde is recognized for his tireless efforts in fighting against the practice of untouchability and advocating for support and education for untouchables, including Dalits.
आज ही के दिन यानी 18 अक्टूबर को 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। 18 अक्टूबर 1972 को पहले बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर SA-315 का बेंगलुरु में परीक्षण हुआ था और 18 अक्टूबर 1980 को पहली हिमालय कार रैली को मुंबई के ब्रिबॉन स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
In 1995, President's rule imposed in UP and the State Assembly put in suspended animation. In 1997, Prince Philip switches on the internet version of Malayalam Manorama and The Week at Kochi. In 2000, Supreme Court gives a nod for construction of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. The Sardar Sarovar project is one of the largest water resources project of India, covering four major states, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. In 2019, NASA astronauts Jessica Meyer and Christina Koch take part in first all-female spacewalk when they venture out of the International Space Station to replace a power controller. In 2023, 18th October, climate activist Greta Thunberg was arrested at a demonstration outside an oil conference in London.
और आज ही के दिन एक और घटना घटी थी इससे पहले 2007 में। नीना, 2007 18 अक्टूबर को सुदूर अंतरिक्ष में जीवन की तलाश के लिए सैन फ्रांसिस्को के हैट क्रीक इलाके में एलन टेलीस्कोप एरे यानी ATA लगाया गया था। तो ये कुछ घटनाएं थी जो 18 अक्टूबर को इतिहास में घटी हैं पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया की ही कुछ ऐसी शख्सियतों की बात कर लेते हैं जिनका आज ही के दिन 18 अक्टूबर को या तो जन्म हुआ या जो हमें आज के दिन छोड़ करके चले गए थे। और इस सिलसिले में हम सबसे पहले जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं विश्वनाथ सत्यनारायण, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 18 अक्टूबर 1976 को वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु भाषा के साहित्यकार थे। 1971 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। ये अगर इनके हम बचपन की बात करें और इनकी शुरुआती जिंदगी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से थे। तेलुगु के महाकवि विश्वनाथ सत्यनारायण अपने विराट उपन्यास वेई पगलु यानी कि सहस्पद, जिसका हिंदी अनुवादक श्री पीवी नरसिंह राव हैं, और इनका जो एक महाकाव्य था वो था श्री रामायण कल्प वृक्षम, इसकी भी हिंदी में अनुवाद हो चुका है, पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ अंशों का अनुवाद है, जिसे डॉक्टर सरोजनी महिषी ने किया था। इन को भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 में मिला और मध्य करुलु नामक कविता संग्रह को के लिए भी ये प्रख्यात है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु के आधुनिक युग में एक उत्कृष्ट कवि थे। संस्कृत के पंडित तो ये थे ही, तुलसीदास के रामचरित मानस से भी वो बहुत प्रभावित थे। विश्वनाथ सत्यनारायण ग्रांथिक शैली को मानने वाले थे, जबकि व्यावहारिक शैली के प्रवर्तक अन्य पत्रकार थे। दोनों विचारधाराओं में कई विवाद चले, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने कई विधाओं में सफलता से लिखा है। 1971 में पद्म भूषण, 1971 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए और 18 अक्टूबर 1976 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में विश्वनाथ सत्यनारायण का निधन हो गया।
टुडे इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन, हु वाज स्पेशली नोन फॉर हिज क्रिटिकल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द मॉडर्न एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी बल्कि 1000 से ज्यादा इन्वेंशन हैं, आविष्कार हैं जिसके जो इनके नाम पर हैं। बहुत बड़ा नाम है।
डेफिनेटली
जी।
सो ही डाइड इन वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी। टुडे इज ऑल्सो डेथ एनिवर्सरी ऑफ लकी फिलिप ड्यूब, who was a South African reggae musician and Rastafarian. His record sales worldwide earned him the best-selling African Musician Prize at the 1996 World Music Awards. In his lyrics, Dube discussed issues affecting South Africans and Africans in general to a global audience. Dube continued to release commercially successful albums. In 1989, he won 4 OK TV Awards for Prisoner, one for Captured Life the following year and another two for House of Exile the year after. His 1993 album Victims sold over 1 million copies worldwide. In 1995, he earned a worldwide recording contract with Motown. His 1995 album Trinity was the first release on Taboo Records after Motown acquired the label. Here's a song, Rasta Man's Prayer, from his album Trinity.
There comes a time in every man's life where he's got to face the truth, no matter what. We are coming to you, Father, with our sins and everything to thank you. Those that smoke.
और आज ही नीना पुण्यतिथि है एक और उपन्यासकार, साहित्यकार, लेखक की, जिनका नाम है रावुरी भारद्वाज। इनका जन्म 1927 में हुआ था और आज ही के दिन 18 अक्टूबर 2013 को इनका निधन हुआ था। ये एक तेलुगु उपन्यासकार, लघु कथा लेखक, कवि और समीक्षक थे। 2012 में 48वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया था। रावुरी भारद्वाज के 40 लघु कथा संग्रह, 20 उपन्यास, 3 निबंध संग्रह और 8 नाटक और साथ ही 5 रेडियो रूपांतरण प्रकाशित हुए। उन्होंने बच्चों के लिए 6 लघु उपन्यास, कादंबरी, पकुद्वारुलु, जीवन समारम, इनुपु तेरा वेनुका, कौमुदी और 5 लघु कथा संग्रह लिखे। उनके ज्यादातर रचनाक्रम का प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद किया जा चुका है। इनके बारे में एक खास बात यह है नीना, रावुरी भारद्वाज के बारे में, कि औपचारिक रूप से जिस हम शिक्षा प्राप्त करना कहते हैं कि हमारी स्कूलिंग, हमारा कॉलेज, हमने मतलब कहां तक पढ़ा, तो जो इनकी औपचारिक शिक्षा थी ना वो सिर्फ 8वीं तक थी। 8वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ा था, उसके बाद औपचारिक शिक्षा इनकी नहीं हुई, लेकिन वो इतने ब्रिलियंट, इतने टैलेंटेड थे, इन्होंने इतना सब कुछ लिखा कि इसके बाद डॉक्टर रावुरी भारद्वाज को तीन विश्वविद्यालयों ने, एक या दो नहीं, तीन विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उनके हिस्से में आई, और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इंसान अगर चाहे तो फॉर्मल एजुकेशन हासिल न करने के बावजूद कुछ बहुत बड़ा भी कर सकता है। और रावुरी भारद्वाज जो है वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर रावुरी भारद्वाज, डॉक्टर मतलब उनको क्योंकि डॉक्टरेट तीन मिले इसीलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तभी उनको हम डॉक्टर रावुरी भारद्वाज कहते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 18 अक्टूबर 2013 को हैदराबाद में डॉक्टर रावुरी भारद्वाज ने आखिरी सांस ली।
व्हाट एन इंस्पिरेशन आई मस्ट से
एक्चुअली।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बर्थ एनिवर्सरीज। Tennis player Martina Navratilova, who dominated the sport in the late 20th century, winning 18 Grand Slam single titles, was born in Prague 1956, 18th October. And born on 18th October 1960, known professionally as Jean-Claude Van Damme, is a Belgian martial artist and actor. He became a popular action film star and followed up with commercially successful films such as Cyborg, Kickboxer, Lionheart, Death Warrant, Double Impact, Universal Soldier, Nowhere to Run, Hard Target, Time Cop, Street Fighter, and many more. Charles Edward Anderson Berry was born in 1926, March 18, 2000. He was born on October 18, 1926. Popular as Chuck Berry, was an American singer and songwriter and one of the pioneers of rock and roll music. Nicknamed the father of rock and roll, Berry refined and developed rhythm and blues into the major elements that made rock and roll distinctive, with songs such as Maybelline, Roll Over Beethoven, and rock and roll music, and Johnny B with Chess. He recorded Maybelline Berry's adaptation of the country song Ida Red, which sold over a million copies, reaching number one on Billboard magazine's rhythm and blues chart. Here's Maybelline.
Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. Motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing I'd run my V8 road.
और जयंती है आज ओम राजेश पुरी की भी, जिन्हें आप और हम आम तौर पर, खास तौर पर दिल से, जबान से और नजरों से पहचानते हैं ओम पुरी के नाम से। 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला पंजाब में ओम पुरी का जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम ओम राजेश पुरी था। हिंदी फिल्मों में उन प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे ओम पुरी, जो अपनी अभिनय क्षमता से किसी भी किरदार को पर्दे पर जीवंत करने में सक्षम थे। वो भारतीय सिनेमा के एक कालजयी अभिनेता थे। उनके अभिनय का हर अंदाज दर्शकों को प्रभावित करता है। पहले पर्दे पर जब ओमपुरी का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखता है तो दर्शकों को भी अपनी खुशियों का एहसास होता है और उनके दर्द में दर्शक भी दुखी होते हैं। अब क्योंकि हमने दर्द और खुशियां दोनों की बात करी है तो दोनों से ही एक एक एग्जांपल मुझको याद आ रहा है। एक फिल्म आई थी हेरा फेरी। हेरा फेरी में ओमपुरी ने एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर प्ले किया था कि जब भी वो पर्दे पर आते थे उनका चेहरा देखते के साथ ही हमारी दर्शकों की हंसी छूट जाया करती थी।
और जब इसके बाबूजी का देहांत हुआ था तो मैंने बड़ी मुश्किल से 35,000 रुपए इकट्ठे करके इस कंजर को दिए थे।
खड़क भाव, ए भाव, दुनिया में सबसे बड़ा चीज प्यार है। पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों है।
आपकी तारीफ
बाबूराव गणपतराव आपटे।
देख बाबूराव भाई, पैसा आज है, कल नहीं है,
परसों है ना।
ओए परसों अगर गलती से हुआ तो नरसों बिल्कुल नहीं होगा। तू दे सकता है मेरे को पैसे अभी?
और अगर हम उनकी बात करें कि जो उनका सीरियस गंभीर अभिनय होता था तो वो भी अपने आप में एक माइलस्टोन जिसको कहा जाएगा रहेगा। हिंदी फिल्मों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्मश्री, इन सभी से सम्मानित किया गया था। हिंदी सिनेमा के वो सितारे थे जिन्हें लोग हर भूमिका में देखना पसंद करते थे। कलात्मक सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा, वो सभी जगह अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे। 1981 में ओमपुरी को फिल्म आक्रोश मिली और उनके अभिनय की जमकर तारीफ और इसके बाद फिल्मी दुनिया में उनकी गाड़ी चल निकली। भवनी भवई, स्पर्श, मंडी, आक्रोश, मिर्च मसाला, धारावी और शोध जैसी फिल्मों में ओमपुरी के सधे हुए अभिनय का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोला और उनकी फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई अर्धसत्य। और उसको हम कैसे भूल सकते हैं जो टीवी सीरियल तमस में उनका एक बहुत ही जबरदस्त किरदार था।
माफ करना अम्मा, माफ करना, मेरे किए का फल तुम्हें भी भुगतना पड़ा। ऐसे भी अभाग में पूरा क्रियाक्रम भी नसीब नहीं। मैं दरबार साहब जाके तेरे वास्ते अरदास कराऊं।
ये थे ओमपुरी। और वैसे तो आज इब्राहिम अलकाजी की भी जयंती है, लेकिन वक्त नहीं है कि बात की जाए, तो अभी विदा लेने का वक्त हो गया है। अनुपा दीजिए नईम अख्तर और नीना अरकल मैथ्यू को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।